ओम शांति। एक व्यक्ति अपना काम कर रहा था, काम करते करते उसको थकावट हो गई, तो उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। जब उसने थोड़ी देर आराम की और फिर उठा और अपना रेडियो शुरू किया, तो रेडियो में न्यूज आए कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, अनेक लोगों ने जानें गंवा दी। जब उसने ये सुना तो उसको लगा कि भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे कारण इतने लोगों की मृत्यु हो गई, उसको बहुत बड़ी पाप की ग्रंथि हुई और उसने आत्महत्या कर ली। वह कौन था? वह लाइट हाउस का सिग्नल मैन था, कि लाइट हाउस से शिप्स को सिग्नल्स देता था। लेकिन वो सो गया तो ठीक से सिग्नल नहीं दे पाया, तो बड़ा एक्सीडेंट हो गया। तब उसे पता नहीं चला जब एक्सीडेंट हुआ, जब रेडियो ऑन किया और समाचार सुना तब ही पता चला कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। तो ऐसे ही जो भी आइस ब्रेकिंग होते हैं उसमें हम थोड़ा अलग दृष्टिकोण से सोचने लगे तो हमें राइट आंसर मिल जाता है। इसी प्रकार आज हम संगठन की शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, सहयोग की शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, तो भी हमें आवश्यकता है अलग ढंग से सोचने की। आमतौर पर क्यों संगठन नहीं होता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं सहयोग दूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा, या मुझे तो कोई फायदा नहीं होना है, तो इसलिए हम अपना ही स्वार्थ सोचते रहते हैं और सहयोग नहीं देते। ये सारे विषय में अलग दृष्टिकोण से हमें सोचना होगा। देखो कहते हैं कि हर फूल की अदा अपनी अपनी होती है, हर फूल की खुशबू अदा अपनी अपनी होती है, परंतु जब इसका गुलदस्ता बना दो तो बात ही कुछ और होती है। तो ऐसे ही संगठन में भी जब एक गुलदस्ता बन जाता है तो बहुत बड़ा असंभव भी संभव हो सकता है। और संगठन का सचमुच महत्व क्यों हमें देना चाहिए? एनी बेसेंट ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। उन्होंने कहा है कि आमतौर पर कोई भी परिवार में है या आपकी सोसाइटी में, ऑफिस में कोई भी काम करना होता है तो हम अधिकतर सोचते हैं कि किसी को तो ये काम करना चाहिए, परंतु मैं क्यों करूं, कोई ना कोई कर लेगा। और दूसरी बात है, देखो इसी प्रकार का वाक्य है परंतु उसमें बहुत बड़ा अंतर है कि किसी को तो ये काम करना चाहिए परंतु मैं क्यों ना करूं। आ रहा है समझ में? तो बस इतना सा, ये दोनों वाक्यों में थोड़ा सा मामूली अंतर है, परंतु दूसरी बात पर अगर हम सभी सोचने लगे तो स्वाभाविक ही जहां भी आप हो सहयोग देना प्रारंभ कर देंगे। विवेकानंद ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई है। उन्होंने पतंजलि थियरी ऑफ इवोल्यूशन, इसके विषय में बोलते हुए कहा कि कॉम्पिटिशन इज मोमेंटरी एक्सट्रोनियस एफर्ट्स, देर इज नो नीड टू बिलीव दैट कॉम्पिटिशन इज नेसेसरी फॉर प्रोग्रेस। कि जो स्पर्धा हम करते हैं वह स्पर्धा वह बाहरी एक एफर्ट है और वह भी क्षणिक एफर्ट है। ऐसा कोई भी कारण दिखाई नहीं देता है कि सफलता के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्पर्धा और कंपटीशन की जरूरत है। एक बहुत बड़ी कंपनी थी बॉम्बे में, उनकी कई ब्रांचेस होती थी, सारे देश में अलग अलग ब्रांचेस थी, और उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो साल में दो बार वो सभी ब्रांच के जो चीफ होते थे, जनरल मैनेजर्स होते थे, तो उनको साथ में इकट्ठा करते थे और एक बड़ी होटल में ले जाते थे और उनको कुछ बातें सिखाते थे कि कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। और उन्होंने एक युक्ति सोची थी कि बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए। उन्होंने क्या किया था कि पीछे दीवार में जहां ये बातें सिखाई जाती थी वहां एक घोड़े की रेस दिखाई थी, और घोड़े की रेस में सभी घोड़ों पर एक एक जनरल मैनेजर का फोटो चिपका दिया था। उन्होंने सोचा कि भी इससे ये लोग कंपटीशन करेंगे और हमारा बिजनेस से बहुत आगे बढ़ेगा। परंतु देखा कि एक साल में उल्टा बिजनेस लॉस करने लगा। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब वो लोग अपने चेहरे को देखते थे तो समझते थे हमको कंपटीशन करनी है, वो दूसरा जनरल मैनेजर है दिल्ली वाला है उससे मुझे आगे बढ़ना है, वो सोचता कलकत्ते वाला है उससे मुझे आगे बढ़ना है, तो वो एक दूसरे को सहयोग नहीं देते थे। हाँ, उल्टा उनको कहीं पर भी बाधा बनने की कोशिश, उनका कोई काम होता तो करते ही नहीं, क्योंकि उसका काम हो जाएगा तो आगे बढ़ेगा, मुझे उससे आगे बढ़ना है। तो जब इस प्रकार की उनकी मनोभूमिका रही तो उल्टा बिजनेस लॉस करने लगा। इसलिए सचमुच कंपटीशन से काम नहीं होता है, काम सहयोग से कोऑपरेशन से बहुत ही अच्छा हो सकता है। हेलेन केलर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। हाँ, किसने सुना हेलेन केलर का नाम? हेलेन केलर बड़ी प्रसिद्ध हुई, वो ऐसे तो अंधी थी, गूंगी थी, बहरी थी, फिर भी वो अच्छी चिंतक थी, वो बहुत कुछ सोचती थी। इतनी बड़ी समस्या होते हुए भी जो कुछ भी उससे बन पाया वो करती रही, उसने किताब भी लिखी जो भी बहुत ही प्रसिद्ध हुई। हेलेन केलर ने बहुत ही अच्छी बात बताई है, उसने कहा है कि यह जो दुनिया चल रही है, ये कलयुगी रूपी दुनिया चल रही है, वह ये नहीं समझो कि भी महान आत्माएं कुछ काम कर रहे हैं, बड़ा बड़ा काम कर रहे, उसके कारण यह दुनिया चल रही है। उन्होंने कहा नहीं, ये जो दुनिया चल रही है वो छोटे छोटे लोग जो थोड़ा थोड़ा सहयोग देते, थोड़ा थोड़ा धक्का लगाते हैं, उसके कारण यह दुनिया चल रही है। गोवर्धन पर्वत को उठाने की भी बात सबने सुनी है ना, ना कि वे सबने उंगली दी, अकेले से वह गोवर्धन पर्वत नहीं उठना था। तो ऐसे ही आपके परिवार में, ऑफिस में, सोसाइटी में, जहां पर भी हम हैं, सहयोग बहुत बड़ी चीज है। हमारे देश को भी अगर हमें आगे बढ़ाना है ना, हम सब चाहते हैं कि भी एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए, तो हम चाहते हो तो छोटे से छोटे व्यक्ति को भी, गांव में रहने वाले व्यक्ति को भी यह सोचना होगा कि मुझे क्या सहयोग देना है, तो तभी यह कार्य बहुत बड़ा हो सकता है। और संगठन का वास्तव में अर्थ क्या है? हाँ, इंग्लिश में कहते हैं टीम, सबने सुना है ना। हाँ, टीम का स्पेलिंग क्या होता है? हाँ, TEAM। हाँ, तो टीम का गलत अर्थ मालूम है? हाँ, ये टीम शब्द का एक गलत अर्थ होता है, एक एक वर्ड का मीनिंग है, एक एक लेटर का मीनिंग है। क्या है? कहते गलत उसका अर्थ है टॉप एग्जीक्यूटिव अलोन मैटर्स, कि टॉप एग्जीक्यूटिव अलोन मैटर्स, मतलब कि जो सबसे बड़ा व्यक्ति है उसी का मायना रखता है, वो जो कहे वही सभी को करना है, परिवार में भी सोसाइटी में भी। जब ऐसा लोग सोचने लगते हैं कि जो बड़ा कहे वैसे ही सभी को करना है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। परंतु देखो भाई, कैसे इसका महत्व क्या है, एक उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि एक बार यह सत्य घटना है कि एक प्लेटफॉर्म था, एक रेलवे स्टेशन का बहुत ही पुराना सा प्लेटफॉर्म हो गया था, और वो प्लेटफॉर्म को तोड़ने की जरूरत थी, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो जो सुपरवाइजर था उसके जिम्मे था, वो छोटा व्यक्ति था सुपरवाइजर, उसको ये जिम्मेवारी दी गई थी कि तुम्हें इस प्लेटफॉर्म को तोड़ना है। तो सारी उसने तैयारी भी की भी कैसे कैसे तोड़ेंगे इसे, परंतु जिस दिन इसे तोड़ना था तो तब वह बीमार हो गया और आया नहीं। तो जो चीफ इंजीनियर होता था, बहुत बड़ा व्यक्ति था, चीफ इंजीनियर ने कहा कि नहीं आए तो कोई बात नहीं, इसको तोड़ डालो, क्या करो एक क्रेन लेके आओ, क्रेन लेके आओ और इसको तोड़ डालो। तो उस दिन सारी अरेंजमेंट की गई कि क्रेन ले आए, इसको अभी तोड़ डालेंगे। तो दूसरे दिन जब बस तोड़ने ही जा रहे थे तो वह सुपरवाइजर ड्यूटी पे आ गया, जब उसको पता चला कि ये क्रेन से ये लोग इस प्लेटफॉर्म को तोड़ रहे हैं, तो एकदम घबरा गया, भाग भाग के चीफ इंजीनियर के पास गया। कहा सर यह प्लेटफॉर्म के नीचे से लाइव केबल जा रहा है, अगर इसको हम क्रेन से तोड़ेंगे तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो देखिए केवल वो छोटा व्यक्ति था, परंतु उसको पता था कि प्रॉब्लम कहां है। चीफ इंजीनियर बड़ा था, बड़ा एजुकेटेड था, इंटेलिजेंट था, परंतु उसको इस बात का पता नहीं था कि इसके नीचे से ऐसा केबल जा रहा है। तो इसलिए जो व्यक्ति वह काम करता है वह सही निर्णय कर सकता है। आप सोचेंगे कि भाई मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं, मैं निर्णय करूं, तो गलत निर्णय हो सकता है। और यह भी समस्या क्यों हुई पता है? कहते हैं कि जिसको कहा है वर्टिकल मैनेजमेंट, कि ऊपर से नीचे जो भी ऑर्डर दिए जाए वह सभी को मानने हैं, और यह सचमुच फेल हुआ। परंतु कहा गया है कि लेटरल मैनेजमेंट, लेटरल मतलब कि उसी स्तर के लोग जिनको वह काम करना है वही अगर निर्णय करे तो वह सही निर्णय कर पाएंगे। तो इसलिए अब यह समय है, कहते हैं, लेटरल मैनेजमेंट का। और तब उसमें अभी सही अर्थ क्या होना चाहिए, टीम शब्द का सही अर्थ सोचिए। देखो इसका बहुत एक अच्छा सही अर्थ है कि टोटल एफर्ट टू अचीव मोर, कि टोटल एफर्ट, सबको संगठन में एफर्ट करनी है कि हमें ज्यादा प्राप्ति हो, हमारा परिवार, हमारी संस्था और भी आगे बढ़ सके। तो यह सबसे जरूरी चीज है। और टोटल एफर्ट के लिए जब तक हम इसका महत्व नहीं समझेंगे कोई भी व्यक्ति टोटल एफर्ट नहीं करेगा। हमें इसका महत्व समझना चाहिए। और सबसे अच्छा हम कहते प्राणियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप देखें तो एक कैनेडियन गीज होती है, एक पक्षी है कि जिनको जब मौसम बदली होती है तो 4-5 हजार किलोमीटर उड़ के सुरक्षित स्थान पर जाना होता है। तो एक कैनेडियन गीज है, उनके बारे में कहीं अनुसंधान किए गए हैं, देखा गया है कि कैनेडियन गीज जब उड़ते हैं तो साथ में उड़ते और वो एक वी शेप बनाते हैं, वी शेप बना करके साथ में उड़ते हैं। और उसमें यह भी देखा गया कि अगर कोई पंछी पीछे रह जाए तो ऐसा नहीं करते, मानवी क्या करेगा, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें कोई व्यक्ति पीछे रह जाए, वो उसको कोई तकलीफ हो जाए और कुछ हो, तो हम क्या कहते, मारो गोली उसको, छोड़ो, हम तो अपना काम करेंगे, नहीं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे, ऐसा ही करेंगे ना। पक्षी ऐसा नहीं करते। पक्षी क्या करते हैं कि अगर कोई पीछे रह गया तो अपनी स्पीड को कम कर देते, और एक दो पंछी पीछे आते हैं उस पंछी को भी साथ में ले आते और फिर उड़ना प्रारंभ करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि भल हमें धीमा भी होना पड़े, स्पीड को भी घटाना पड़े तो कोई बात नहीं, परंतु संगठन महत्वपूर्ण है। इसमें यह भी देखा गया है कि जो साइड में होते हैं ना वह पुरुष पक्षी होते हैं और जो मादा पक्षी वह अंदर होते, बच्चे भी अंदर होते ताकि, क्योंकि उनको ज्यादा हवा का सामना वह कर सकते हैं। और भी एक बात देखी कि जो सबसे पहले पंछी होता है, ऐसे वी शेप है, सबसे पहले जो पंछी है उसको सबसे ज्यादा हवा का सामना करना पड़ता है, दूसरों को कम करना पड़ता है। तो वह क्या करते हैं कि वह जो पोजीशन है वो बदली होती रहती है, आधा घंटा एक रहेगा, आधे घंटे के बाद दूसरा वहां आ जाएगा, ताकि सभी वह जो फोर्स है उसको झेल सके। तो देखिए पक्षियों से भी कितना सीखना है। और इस पर अनुसंधान भी हुए हैं, कहा गया है कि जब वह ऐसा करते हैं तो एक तो उनको कम शक्ति लगती है और दूसरा कि उनकी जो स्पीड है वह स्पीड भी बढ़ जाती है। तो इसलिए इससे हम सभी भी प्रेरणा ले कि कैसे हम संगठन में कार्य करे। और ऐसी ही और एक स्टडी है वो डॉल्फिन पर भी की गई है, कहते हैं डॉल्फिन से तो बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। डॉल्फिन भी ऐसा ही करते हैं कि वो कहीं भी समुद्र में होते हैं तो एक साथ में एक संगठन बनाते हैं और साथ में तैरते तैरते जाते हैं। उसमें भी यही है, जो नर है वह फ्रंट रो में होती है, फिर मादाएं हैं, बीच में बच्चे हैं, कि जिससे कभी कोई अटैक भी हो, दुश्मन का अटैक हो तो उसके साथ लड़ सके। और यहां तक उनमें देखा गया है कि देखिए संगठन की शक्ति, सहयोग की शक्ति क्यों नहीं आती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों सहन करूं, मैं क्यों त्याग करूं। परंतु डॉल्फिन्स में तो यह देखा गया है कि कभी एकाध डॉल्फिन साइड में रह गया और उस पर कुछ अटैक हुआ तो सारे के सारे वहां चले जाते हैं, भले अपनी जान की बाजी लगा देते, मर जाए लेकिन उस एक डॉल्फिन को हमें बचाना है। तो ऐसे इससे भी बहुत कुछ सीखना है कि कैसे सहयोग की शक्ति का महत्व है। आप अगर शरीर की भी रचना को देख लो तो पांच उंगलियां कैसे काम करती है ना, कोई एक उंगली कहे मैं बड़ी हूं तो काम होगा ही नहीं। तो इसलिए क्योंकि पांच उंगलियां संगठन के रूप में कार्य कर रही है इसलिए यह हो पाता है। यहां तक कि हमारा दिमाग भी, हमारा दिमाग भी, दिमाग के जो अलग अलग हिस्से हैं वो अलग अलग कार्य नहीं करते, दिमाग के अलग अलग हिस्से संगठन में कार्य करते हैं। और सहयोग से जो हम इतनी अच्छी बुद्धि से कार्य कर रहे हैं, मानव ने जो इतनी प्रगति की है सच देखो तो, अगर दिमाग के अलग अलग हिस्से आपस में लड़ते तो यह असंभव था। वह संगठन से कार्य करते हैं इसलिए इतना बड़ा कार्य हो पाया। आपने भी शायद यह कहानी सुनी होगी लेकिन फिर से भी रिपीट करने जैसी है कि संगठन से ही मुश्किल कार्य भी सफल हो सकता है। कहते कि भगवान ने एक बार देवताओं को और राक्षसों को बड़ी पार्टी दी, है ना, उन सबको बुलाया और क्या किया कि उनके हाथों पर बहुत बड़ा चमचा था ना खाने का, बहुत लंबा चमचा लगाया, हाथों पर लगा दिया और कहा कि अभी खाओ, आओ चमचे से आप खा ही नहीं सकते, इतना लंबा था। भगवान ने सोचा भी कि वे लोग क्या करते हैं, तो राक्षसों ने क्या किया मालूम है ना, क्या किया, वो चमचे से ले उड़ाया, खाने गए लेकिन गिर गया, बहुत कोशिश की लेकिन खा ही नहीं सके उसके द्वारा। परंतु देवताओं ने सोचा कि अभी क्या किया जाए, कैसे होगा, तो पता है ना क्या किया, हाँ कभी खाया और दूसरे को खिलाया, हाँ फिर उसने इसको खिलाया तो सबका पेट भर गया। ये बात हमने बार बार सुनी है फिर भी इससे बहुत कुछ सीखने को है कि स्वार्थ से काम नहीं होता है। दानव ने क्या किया, अपना ही सोचा, इसके कारण इतनी बड़ी समस्या हो गई, सभी भूखे रहे। लेकिन देवताओं ने क्या सोचा, औरों के बारे में विचार किया, और जब औरों के बारे में विचार किया तो सबका पेट भर गया। तो बस यही सिंपल सी बात है, वह आप करने लगो तो ऑटोमेटिक होगा। परंतु आए कैसे, इससे भी बहुत कुछ बताया जा सकता है, परंतु सबसे बड़ी बात है कि यह सहयोग की शक्ति हमारे में कैसे आए। वह तब ही संभव है कि जब हम दूसरों के बारे में भी सोचना प्रारंभ करेंगे। वर्तमान युग की भी कहेंगे कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि मानव स्वार्थी बना है, अपना सोचता है दूसरों का नहीं सोचता है। ज्ञानेश्वर ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि सारा विश्व मेरा परिवार है, परंतु आज हम क्या सोचते हैं, मेरा घर ही सारा विश्व है मेरा और कुछ नहीं। तो इसलिए बस यह भाव अगर अंदर में आने लगे तो स्वाभाविक ही सहयोग की शक्ति आ जाएगी। क्या होता है कि जब आप सहयोग देंगे, दूसरों के लिए सोचेंगे तो आपका काम भी हो जाएगा। आज टाइम क्यों नहीं है, क्योंकि हम स्वार्थी बने हैं और अपना ही सोचते हैं, इसी के कारण टेंशन भी बढ़ा है। देखिए आज जिसको कहते हैं ना कि न्यूक्लियर फैमिली हो गए, कि भी पति पत्नी दो बच्चे बस वही है सब कुछ है। पहले जब एक संगठित परिवार रहता था, कई बार देखा है कि भी 50 लोग 100 लोग भी एक ही परिवार में साथ में रहते थे, लगता तो है कि भी उसमें तो प्रॉब्लम होंगे, सब साथ में रहेंगे, पैर अड़ेगा उनका तो तकलीफ हो जाएगी, हमको दिक्कत होगी, परंतु उसका बहुत बड़ा फायदा भी था। यहां भी जो हमारे बुजुर्ग है वो अनुभवी होंगे कि जब हम संगठित परिवार में रहते थे तो कोई बीमार हो जाता था तो वो संभाल करने वाले लोग थे, आपको टेंशन नहीं लेना था। आज देखो घर में कोई बीमार हो गया तो अभी कौन छुट्टी लेगा, दोनों मियां बीबी जॉब कर रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या होती है। बच्चों की पढ़ाई लेना है, क्या प्रॉब्लम हो गया, तो तब होता था कि बच्चों की पढ़ाई करें तो कोई बूढ़े होते थे बच्चों की पढ़ाई ले पाते थे, और कोई समस्या होती थी तो भी सभी साथ में मिल करके उस समस्या का समाधान करते थे, तो तब तनाव भी कम था। जब संगठन था परिवार में तब देखो तो तनाव भी कम था, खुशी भी होती थी। परंतु अब लगता है कि हम इंडिपेंडेंट हो गए क्योंकि हम अकेले ही है, परंतु अगर गहराई से सोचा जाए तो समस्या है वह बढ़ गई है, समस्या कम नहीं हुई है। अच्छा, और जो बात मैं आपको बता रहा था कि ऐसा कैसे हो, ये करने के लिए ऊपर ऊपर से सोचेंगे तो नहीं होगा, परंतु अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से इस सारी बात के बारे में आप विचार करो तो उसका समाधान सहज ही मिल जाएगा। अगर यह सोचा जाए कि वास्तव में मेरे में जो चेतना है वही सभी में है, भले मेरा अस्तित्व अलग है, हम सबके शरीर अलग अलग है, परंतु आत्माएं कहेंगे कि एक है। कई बार ये भी कहते हैं ना कि भाई यह दो शरीर है परंतु आत्मा एक है, जिनमें भी बहुत फ्रेंड्स होते हैं, बहुत ही क्लोज है, उनके लिए कहा जाता है। तो ये भावना अगर हमारे में आए कि सभी के प्रति मुझे सही भाव लाना है, और तब ही होगा। हाँ, जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि मैं वह दिव्य चेतना हूं, मैं एक आत्मा हूं, यह हो नहीं सकता। क्योंकि नहीं तो यही होगा कि भी धर्म की बात आएगी कि भी हम तो हिंदू है, मुसलमान है, ये सिख है, या तो देश की भी बात आएगी कि हम इंडियन है, ऑस्ट्रेलियन है, ये अफ्रीकन है, इसको क्यों हम सहयोग दे। परंतु जब आप यह समझते हैं कि हम सब दिव्य चेतनाएं हैं तो सबके प्रति एक जैसा भाव आता है, और हम सहयोग भी दे सकते हैं। आज देखो सहयोग नहीं देते हैं तो एक बात, यह रियल एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र के ही जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ समय पहले ब्रह्मा कुमार इसके कॉन्फ्रेंस हुई थी बॉम्बे में, उसमें यह उदाहरण दिया था कि आज लोग स्वार्थी, देखो कितनी बड़ी समस्या होती है कि एक महिला को डिलीवरी होनी थी तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो डिलीवरी से पहले उन्होंने कहा कि भाई खून की जरूरत पड़ेगी, डिलीवरी के समय खून चाहिए, तो उनके पति जो है वो पैसे का प्रबंध करने के लिए कहीं पर गए और काफी समय तक आए नहीं, तो वह महिला भी बाहर आई देखने के लिए वो कभी आएंगे और तब फिर ये सब कुछ होगा, तो वह बाहर खड़ी थी तो उतने में उसको डिलीवरी हो गई, और डिलीवरी हो गई तो उसे चक्कर आने लगे, चक्कर आकर के गिर गई, और गिर गई बच्चे का जन्म भी हो तो बेहोश हो गई, और उतने में कुत्ता आया बच्चे को उठा के ले गया, कुत्ते ने बच्चे को खा डाला। और यह एक हॉस्पिटल के आंगन में हुआ जहां लोग भी आसपास घूम रहे थे, तो देखिए हाँ किसी ने भी यह नहीं सोचा, हेल्थ मिनिस्टर ने भी कहा कि मैं अभी किसको शिक्षा दूं, समझ में नहीं आता है कि भी डॉक्टर की गलती या वहां लोग भी तो थे, लोग भी जा, किसी ने भी नहीं सोचा कि भी इसको डिलीवरी हुई है चलो उठा के भी हम लेकर के जाए, या तो किसको ठीक से इन्फॉर्म करे, नर्स को ले आए कि देखो ऐसी समस्या हुई है। तो इस प्रकार आज जो व्यक्ति स्वार्थी बना है उसके कारण यह तो बड़ी बात है, परंतु छोटी छोटी अनेकानेक समस्याएं हो, और तभी संभव है कि जब हमारे में आध्यात्मिकता है। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं ना, धर्म से तो झगड़े हुए हैं, धर्म के कारण तो समस्याएं आज हो रही है, परंतु सही अर्थ में आध्यात्मिकता को अपनाएंगे तो तभी ये वसुदेव कुटुंबकम की भावना होगी, एक दूसरे के प्रति सही व स्थिति बनेगी। और वो भी करने के लिए देखो सिर्फ है ना प्रवचनों से नहीं होगा, ऐसे टॉक शो से भी नहीं होगा। कब होगा कि जब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे, क्योंकि एक नेचुरल है, स्वाभाविक बात है। और ध्यान का अभ्यास करना होना देखो सिंपल है, तीन आर को याद रखो, आर से शुरू होने वाले तीन शब्दों को याद रखो। ये तीन शब्द है रिलैक्स, दूसरा है रिफ्लेक्ट और तीसरा है रियलाइज। ये तीन करो कि भी पहले आराम से रिलैक्स होके बैठो, जितना हो सके शरीर को हल्का कर दो, विचारों को भी थोड़े शांत कर दो कि इतना समय तो मुझे ध्यान करना है। फिर कहते रिफ्लेक्ट करो, है ना, सोचो इस बात पर, अभी भी मैंने जो बताया उस पर भी आप सोचो। और ध्यान में तो हमें स्व के बारे में सोचना है, ये जो बहुत बड़ी पहेली है कि मैं कौन, इसके विषय में सोचो। अगर थोड़ा गहराई से उसके बारे में सोचेंगे तो ऑटोमेटिक आप उसको रियलाइज भी करेंगे, उसी बात को अनुभव भी करेंगे। और उस बात को अनुभव करेंगे तो नेचुरली हमारे में वह भाव निर्माण होगा। कहते हैं कि भावनाओं में जबरदस्त शक्ति है ना, बुद्धि भी कुछ कर सकती है, बुद्धि में भी ताकत है, परंतु बुद्धि से जब हम सोचते हैं तब कुछ हद तक कार्य होता है। जब हम भावना से सोचते हैं तो इमोशंस में जबरदस्त शक्ति है, हम पहाड़ को भी उठा सकते हैं। देखो संगठन के बारे में और एक बात ध्यान में आ रही है, कहते हैं कि सिएटल में पैरालंपिक्स हुआ कि जो पैराप्लेजिक थे, जो बच्चे ठीक से चल नहीं जाते, पैरालिसिस के अटैक हुए थे और भी उनको कोई ना कोई तकलीफ थी, तो ऐसे जो फिजिकली चैलेंज बच्चे थे उनकी रेस हुई। तो जो था कि 100 मीटर की फाइनल में है ना 8 बच्चों आए और उनको दौड़ना था, और जैसे रेस शुरू हुई एक बच्चा गिर गया, उसने उठने की कोशिश की परंतु उठ नहीं पाया, दूसरी बार कोशिश की तो भी उठ नहीं पाया। तो उतने में जो आगे एक लड़की दौड़ रही थी उसने पीछे देखा तो वापस पीछे आई और उसको कहा उठो उठो कोशिश करो, कोशिश की लेकिन उठ नहीं पाए। उतने में दूसरे 6 बच्चों ने भी पीछे देखा तो सारे के सारे वापस आ गए और उसको हिम्मत दे करके उठाया और फिर सभी हाथ में हाथ डाल करके साथ में दौड़े और जो फिनिशिंग लाइन होती है सबने एक साथ में क्रॉस की। तो वहां 3,000-4,000 लोग देखने के लिए इकट्ठे हुए थे, हाँ, तो सभी ने खड़े होकर के उनका सम्मान किया, उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। कहते दूसरे दिन अखबार में भी छपा, क्या अखबार में छपा कि हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड, एक इतिहास रचा गया कि 8 लोगों को गोल्ड मेडल मिला। और दूसरे अखबार ने लिखा कि वी कॉल देम फिजिकली डिसेबल्ड बट आर दे मेंटली रिटार्डेड और स्पिरिचुअली एडवांस्ड। कौन थे? स्पिरिचुअली एडवांस्ड थे लोग। तो सचमुच यह है सही, और भावना से हुआ। देखो मेंटली रिटार्डेड है, पैराप्लेजिक है, तो उनमें भी यह बहुत बड़ी भावना है। हम लोग क्या करते हैं, हम दौड़ते हैं और कोई गिर जाए तो क्या करते, अच्छा हुआ एक तो कम हुआ, मुझे चांस मिलेगा। तो इस प्रकार सहयोग की बात को आप हर फील्ड में बस सोचिए। जब भी ऐसी बातें करते हैं ना तो लोग करते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन ये टॉक शो में मेरे बॉस को बुलाना चाहिए था, ये चीज है मेरे बॉस के लिए बहुत काम की है। जो सीनियर लोग यहां बैठे हो सोचते होंगे कि यार वो मेरे जूनियर को इस टॉक शो में बुलाना चाहिए था, तो उसको फायदा होता है। दूसरे का नहीं सोचो, हम अपना सोचें। ब्रह्मा कुमारीज का भी जो सबसे बड़ा स्लोगन है, कई लोग भी पूछते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, तो ब्रह्मा कुमारीज का सबसे फंडामेंटल लक्ष्य है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, कि हमें स्व को परिवर्तन करना है तो विश्व परिवर्तन भी हो जाएगा। अच्छा, हाँ, कुछ प्रेरणा मिली, कुछ सीखने को मिला।
हाँ डॉक्टर साहब, जैसे कहा ना संगठन की शक्ति सब कुछ कर सकती है, उसके लिए सबसे पहले स्नेह की शक्ति चाहिए।
बिल्कुल,
क्योंकि
हाँ।
तो हमारे भारत देश में एक नारा लगाया जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई,
भाई हाँ जी हाँ।
तो भाईचारा आएगा कैसे?
हाँ जी हाँ, नहीं तो बहुत अच्छी बात है कि स्नेह की शक्ति। और स्नेह भी कब आएगा? जब आत्मिक स्मृति आएगी, जो कहा कि मैं वह दिव्य चेतना हूं, नहीं तो स्नेह नहीं आएगा। ये सोचेंगे ना कि भी तो अलग धर्म का है, मैं क्यों उसको सहयोग दूं, या तो और जाति का है उसको मैं क्यों सहयोग दूं, या तो वह मेरे परिवार का नहीं है, ठीक है ना। तो वह हमारा स्नेह सबसे बड़ी चीज। देखिए, और एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि आपको रास्ते में कभी चोट लगे तो बहुत दुख होगा, ठीक है ना, परंतु पत्नी को चोट लगे तो कम दुख होगा, ठीक है ना। दुख तो होगा क्योंकि मेरी पत्नी है, तो कम दुख होगा। हाँ, कोई न्यूट्रल व्यक्ति को चोट लगे जिसको आप जानते ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा, ना दुख होगा ना सुख होगा। और दुश्मन को चोट लगे तो खुशी होगी। हाँ, तो देखिए सारा भाव है, इसलिए बस इस भाव को निर्माण करना है कि इस सृष्टि में हम सभी आत्माएं एक समान है, हर प्रकार से हम सभी परमात्मा की संतान है। इससे भी संगठन आ सकता है कि भी परिवार में तो हम थोड़ा बहुत संगठन सहयोग देते हैं, परंतु यह सोचे कि भी यह सारी सृष्टि वह परमात्मा की रचना है। भगवान ने कभी यह नहीं कहा कि मैं हिंदुओं का पिता हूं, मैं मुसलमानों का पिता हूं। भगवान तो सभी के पिता है। यहां तक भी कहा गया कि भगवान का कोई धर्म नहीं, जो धर्म बनाए ना हम लोगों ने बनाए, भगवान का कोई धर्म नहीं। तो ये सब बातों पर विचार करेंगे तो ऑटोमेटिक स्नेह होगा और सहयोग की भावना भी आएगी।